नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन स्थल पर पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने श्री मोदी का स्वागत किया। सम्मेलन का विषय है एकजुटता, समानता और स्थिरता। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा।
दक्षिण अफ्रीका ने इस वर्ष G20 की अपनी अध्यक्षता में कई प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, कम आय वाले देशों के लिए ऋण स्थिरता सुनिश्चित करना, न्याय संगत ऊर्जा परिवर्तन के लिए वित्त जुटाना तथा समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों का दोहन शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक दृष्टिकोण से प्रेरित भारत की G20 अध्यक्षता को वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक आदर्श के रूप में देखा गया। जोहान्सबर्ग से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए लोगों के कौशल और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई बाबा की शताब्दी के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने साई कुलवंत हॉल में श्री सत्य साई बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की।
सत्य साई बाबा की जन्म शताब्दी के अवसर पर सभी लोग ये संकल्प ले कि हम उनके प्रेम और सेवा के संदेश को आत्मसात करेंगे। हम व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसे सभी प्रयास करेंगे जिससे विश्व में शांति को बल मिले और संपूर्ण मानवता का कल्याण हो।
भारतीय मजदूर संघ ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्या ने कहा कि आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष डॉ दीपक जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं को लागू होने से अब उनका न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगा। नई श्रम संहिताओं का स्वागत करते हुए नेस्कॉम ने कहा कि इसके प्रमुख प्रावधान भारत की श्रम सुधार यात्रा में महत्वपूर्ण कदम हैं। दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्करों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक अभियान में 10 अत्याधुनिक पिस्तौलें बरामद की, जिनमें 5 तुर्की निर्मित और 3 चीन निर्मित हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त सुरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में बताया कि यह गिरोह कुख्यात बदमाशों को हथियार आपूर्ति कर रहा था। उन्होंने बताया कि नेटवर्क उच्च स्तरीय विदेशी पिस्तौलों की तस्करी के लिए पाकिस्तान से ड्रोन का इस्तेमाल करता था। मामले की जांच जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है और अमेरिका की 28 सूत्री शांति योजना पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पे सबसे ज्यादा दबाव है और देश को अब तक एक बहुत मुश्किल चुनाव करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगला सप्ताह बहुत मुश्किलों से भरा होगा क्योंकि वो अमेरिका की योजना में बदलाव के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं। गोवा के पणजी में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सितारों की चमक बरकरार है। फिल्म महोत्सव के तीसरे दिन भी फिल्म स्क्रीनिंग और मास्टर क्लासेस से लेकर उभरते फिल्मी सितारों के साथ विशेष बातचीत तक सिने प्रेमियों का मनोरंजन जारी है। गुवाहाटी में भारत के साथ दूसरे अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन दक्षिण अफ्रीका ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। लक्ष्य सेन ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। आज सेमीफाइनल में लक्ष्य ने चीनी ताइपे के चाओ टियन चेन को करीबी मुकाबले में पराजित किया। इधर नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सरदार एट 150 एकता यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि सरदार पटेल की विरासत को सम्मान देने के लिए देश भर में कई आयोजन किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।